शांति। आज का विषय बहुत ही अच्छा विषय है, संबंध में आते। हम परिवार में भी और जहां भी हम कार्य करते हैं वहां संबंध में आते, बाप समान साक्षी और साथी स्थिति कैसे रहे, तो इस पर हम अभी चिंतन करेंगे, रूढ़िहान करेंगे। मीठे बाबा ने तो हमको बहुत सारी बातें समय समय पर इस विषय में समझाई हैं, तो आज हम इसके निष्कर्ष, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में, हम ब्राह्मणों के जीवन में वो स्थिति कैसे बने कि हम भले घर में, परिवार में या कार्य करते हुए, हम संबंध संपर्क में आते हुए दुनिया के, फिर भी हम अपनी स्थिति को बनाकर रखें, साक्षी रहें, उसमें फंसे नहीं, और साथ साथ बाप हमारा साथी रहे, बाप का निरंतर साथीपन का अनुभव, बाप से सर्व संबंधों का अनुभव कैसे होता रहे, इस पे हम आपसे चिंतन करेंगे। इससे पहले हम दोबारा से एक मिनट सभी बहुत गहराई से अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे, सिर्फ दो मिनट के लिए, फिर वापस हम बाबा से, बाबा की बहुत गहरी याद में बैठते हैं और फिर हम शुरू करें। व्हाइट लाइट में बैठेंगे ऐसे ही, बिना ही म्यूजिक के, दो मिनट सभी मन बुद्धि को समेट लेंगे और फिर, ताकि जो भी चिंतन हम करें बाबा की गहराई में, हमारे बुद्धि में, दिल में बैठता जाए। चलिए, सभी सीधे होके बैठे, एकाग्र होके बैठे, अलर्ट होके बैठे। ओम शांति। अभी परसों ही बाबा ने हमको कहा कि हम सब बाबा के बेफिक्र बादशाह बच्चे हैं, क्योंकि हमने सब अपने फिक्र बाबा को दे दिए हैं। और क्या ले लिया? फकुर ले लिया है ना। फकुर से क्या आया हमारे अंदर? चमक है ना, लाइट की चमक, मस्तक में लाइट की चमक आ गई। और बाबा ने यह भी कहा कि हमें व्यर्थ को भी समाप्त करना है ना, व्यर्थ को समाप्ति समारोह मनाना है, और आलस और अलबेलेपन को इस वर्ष में विदाई देनी है। और मुझे याद आता है एक बार बाबा ने इस पे कहा था, इसी बात पर जो आज का टॉपिक है, कि संबंध संपर्क में आते अगर हम बाप समान साक्षी रह सकते हैं और बाप मेरा साथी है इस अनुभव में रह सकते हैं, तो इसी आधार पर नंबर बनते हैं। माला का दाना बनने के लिए, विजय माला का दाना बनने के लिए इसी आधार पर नंबर बनते हैं, क्योंकि जब हम संबंध संपर्क में आते हैं परिवार में या कार्यस्थान पर, वहां पर ऑटोमेटिक पुराने स्वभाव संस्कार जागृत होते हैं, वहीं पर ही वैध संकल्प आते हैं, वहीं पर ही टकराव, लगाव, झुकाव, टकराव की पैदा होता है। कई बार हम कहते हैं ना, हमारा बाप से तो बहुत अच्छा प्यार है ना, बाप में तो हमें निश्चय है, किंतु परिवार में निश्चय कम है ना, तो स्वयं में भी निश्चय है कि बाबा ने हमको चुना है। बाबा ने एक बार बताया था, चार प्रकार के निश्चय बताए थे, आप सबको याद होगा कि इस एक पीछे भी मुरली चली थी, पिछले भी संडे को मुरली चली थी, तो और वैसे भी अदरवाइज भी बाबा समय अनुसार बताते रहते हैं कि चार प्रकार के निश्चय बाबा ने कहा था। अगर हमें पास विद ऑनर होना है, निश्चय बुद्धि, अगर हमें विजय होना है, विजय माला का दाना बनना है, तो चार प्रकार के निश्चय में पास होंगे तो ही हम विजय माला का दाना बन सकते हैं। बाप में तो हम सबको निश्चय है, सभी को निश्चय है, बाप में पक्का पक्का निश्चय है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, या मैं बाबा की, बाबा मेरा, बाबा तो बहुत प्यारा है ना। अभी बाबा ने कहा प्यार में तो सब पास हैं, सबके सब बच्चे पास, मेजोरिटी बच्चे पास हैं, तो बाबा से सबका प्यार है और सबको बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां बाबा से होती हैं, किंतु स्व में भी बाबा ने साथ साथ कहा स्व में भी निश्चय बहुत जरूरी है ना, स्वयं में भी निश्चय अर्थात मुझे बाप ने चुना है, बाप ने कितने सुंदर सुंदर सम्मान मुझे दिए हैं, जो भी बाप के टाइटल वो सब मेरे टाइटल हैं, और स्वयं बाप ने दिए हैं। दुनिया में तो टाइटल मिलते हैं ना, किसी को कोई टाइटल मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है, किसी को कोई टाइटल मिलता है। पहले अंग्रेज लोग राय बहादुर का टाइटल देते थे, लाख रुपए दो तो राय बहादुर का टाइटल मिलता था, और बाप ने मुझे क्या टाइटल दिया है अभी, है ना, कितने बढ़िया बढ़िया टाइटल दिए हैं, मास्टर सुशक्तिमान, है ना, मास्टर रहम दिल, आधार मूरत, उद्धार मूरत, उदाहरण मूरत, साक्षात्कार मूरत, साक्षात मूरत, है ना, कितने बढ़िया बढ़िया टाइटल मुझे मिले हैं ना, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर पवित्रता का सागर, मास्टर शांति का सागर, प्यार का सागर। तो बहुत सुंदर सुंदर टाइटल बाबा ने हमको दिए हैं, बच्चों को दिए। तो वो टाइटल में टिकते जाओ तो कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। तो वो टाइटल हमको उन स्थिति में रहते हैं, बार 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 सही स्थिति में रहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति महसूस होती है। फिर ड्रामा में बाबा ने निश्चय कराया था एक बार, है ना, बाबा ने कहा था तीसरा जो निश्चय चाहिए वो ड्रामा में चाहिए, ड्रामा में निश्चय चाहिए, और चौथा निश्चय था परिवार में निश्चय। अब हम सबसे ज्यादा गहराई हम परिवार में चलते हैं, परिवार में निश्चय, ये जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, ये इवन जो लौकिक परिवार भी हमें मिला है, इसकी हम गहराई में, क्योंकि आज का टॉपिक वही है कि कैसे हम परिवार में रह संबंध संपर्क में रहते हुए, लौकिक या अलौकिक परिवार में संबंध संपर्क में रहते, कैसे हमारी स्थिति बाप समान रहे, साक्षी और साथी की स्थिति कैसे रहे, उसकी हम गहराई में आज चलते हैं। देखिए, जो हमारा परिवार हमें मिला है, जो भी संबंध संपर्क हमें मिले हैं, जो भी हमारे चाहे हमारा चाहे कोई भी भाई बहन है, ये परिवार हमारा है, या सेंटर पे हम रहते हैं, या हम लौकिक परिवार में रहते हैं, या हमारे जैसे बच्चे हैं, या पति पत्नी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, वो ही हमें क्यों मिले हैं, आप समझते हैं ऐसा क्या कारण है, क्या कारण है इसका? इसका कारण कर्मों का सिद्धांत है। जितने भी संबंध संपर्क मिले हैं वो हमारे कर्म के अनुसार हमें मिले, और वो इस जन्म में वो हमको पूरे करने हैं, क्योंकि हमारा आखिरी जन्म है। और बाबा एक्चुअली ये संसार एक ड्रामा है, और इसमें हम सब एक्टर्स हैं, और परमात्मा इसका डायरेक्टर है, शिव बाबा इसका डायरेक्टर है, और शिव बाबा कर्म सिद्धांत के अनुसार इसे डायरेक्ट कर रहा है, इसका निर्देशन कर रहा है। क्योंकि हमने कितने जन्मों से हम इकट्ठे रहे हैं, अभी भी जैसे हम बैठे हैं, या मधुबन में हम रहते हैं, शांतिवन में हम रहते हैं, या आप सेंटरों में रहते हैं, या आप परिवार में एक परिवार लौकिक परिवार में रहते हैं, वो वहां पर हम सब इकट्ठे क्यों हुए हैं, अपने कर्मों का या कर्मों का अकाउंट क्लियर करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल कभी कभी दिया करता हूं, जैसे जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, आपको अचानक पैसे की आवश्यकता पड़ती है, आपने 10 लाख उससे उधार ले लिया, और 10 लाख उधार लिया, और 10 लाख उधार लेने के बाद वो आपकी आप उसको वापस नहीं कर पाए, और आपकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के आपने अगला जन्म ले लिया, आप बड़े होने लगे, इधर 25 साल के बाद जब आप 25 साल के हो गए, इधर इस दोस्त ने शरीर छोड़ दिया जिससे आपने 10 लाख रुपए लिए थे, अब वो बच्चा आपका आके बेटा बनेगा, आपका पुत्र बनेगा, और आप बचपन से उसको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके लिए वो 1000 मांगेगा उसको 2000 देंगे, बड़ा होता जाएगा, फिर उसकी शादी करेंगे, शादी करके टाइम क्या होगा उसके, 10 लाख रुपए खर्च हो गए, जो 10 लाख मिले थे ना इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, और अभी क्या होगा, उसकी शादी हो गई तो उसकी वाइफ क्या बोलेगी उसको, कि अभी ना देखो मुझे तुम्हारे माँ बाप अच्छे नहीं लगते, अभी जो है हमको इनके पास नहीं रहना है, अपनी ट्रांसफर कराओ। वो बच्चा ट्रांसफर करा लेगा, और फिर बच्चा वहां से टेलीफोन करेगा, कुछ दिन तो टेलीफोन करने देगी उसकी वाइफ, किंतु उसके बाद वो कहेगी तुम अपने रोज रोज मां बाप को फोन करते हो, अब फोन करना बंद, कहां से इतने पैसे आएंगे, तो वो टेलीफोन करना भी बंद हो जाता, क्योंकि अभी अकाउंट खाली हो गया। तो ये परिवार, ये जो संबंध है ना, ये जो संबंध संपर्क है, कैसे हमारा संबंध बनता है, वो बेटा मेरा ही बेटा क्यों बना? क्योंकि मुझे उसका 10 लाख देना है। कोई कोई मेरा मेरे आके मेरी युगल बनती या मेरा उसका युगल बनता, वो ऐसा क्यों होता? वो भी किसी जन्म का हिसाब किताब होता। हम किसी की सुनते नहीं, किंतु उसकी सुन लेते हैं। किसी की दुनिया में कोई हमें कुछ नहीं कह सकता, किंतु उसकी हम बाहर थाने, बाहर SHO होगा ना, पुलिस ऑफिसर होगा, सबको डांट लगाएगा, किंतु घर में आके क्या करेगा? घर में वो उसको डांट लगाएगी और आराम से सुनेगा? नहीं होता ऐसा। तो ये जो है हमारा अकाउंट क्लियरेंस है, जिससे हमें, जिसका हमें देना है वो हमें, जिससे हमने लिया हुआ है उसको हमें देना पड़ता है, चाहे वो हमारा बेटा हो, बेटी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, और जिसका जिसको दिया हुआ है उससे लेना पड़ता है। तो ये जो ड्रामा में चल रहा है, लेना देना, संबंध संपर्क में आते हुए, तो साक्षी होकर के इसको देखना है। जैसे बाबा साक्षी होकर देखता है ना, इंटरफियर नहीं करता है। बाबा को पता है ये बच्चा ऐसा कर रहा है, ये बच्चा इसको ऐसा कर रहा है। क्यों देख रहा है वो ऐसा? क्योंकि बाबा को पता है ये बच्चा इसको दुख दे रहा है, तो इसने इसको पहले दुख दिया हुआ है, अकाउंट क्लियर हो रहा है, वो साक्षी है। तो जैसे बाबा ड्रामा के राज को जानता है, ऐसे हमें भी इस ड्रामा के राज को जानना है। फर्क क्या है? वो डायरेक्टर है, वो न्यारा है ड्रामा के से, और हम इसके अंदर हैं। किंतु ये राज को समझते हुए, ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या करें, बाप को साथ रखें। क्योंकि ये सब सहने के लिए, ये सब सामना करने के लिए, ये समाने के लिए, ये समेटने के लिए, ये जो बातें हमारे साथ होती हैं जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में, ये चीजें परखने के लिए, उस पर तुरंत निर्णय लेने के लिए, पहाड़ जैसी बात हमारे सामने हो गई और उस पहाड़ जैसी बात को भी राई बना देने के लिए, कि कुछ ने बहुत बड़ी बात गलत हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई मर गया, पैसे का नुकसान हो गया, उसको समेट लें बुद्धि में। जैसे बाबा ने कहा ना, 1 सेकंड में बिंदु लगा दो। ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंस आएंगे, बहुत बड़े बड़े सर्कमस्टेंस आएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिससे आप उम्मीद करते हैं बहुत, वो कुछ भी रहेगा नहीं, जिससे वो वहीं से धोखा मिल जाएगा। जैसे आप कई बार, मैं एक प्रैक्टिकल और बात मैं आपके सामने रखता हूं, कई बार परिवार में हम क्या होता है, हम परिवार में सोचते हैं, एक मान लीजिए एक पिता है, अपने बच्चे के लिए सोचता है, मैं इसके लिए बहुत, परिवार के लिए, उसकी पत्नी है, एक बच्चा है, एक बेटी है, और सोचता है मैं सब कुछ, हो दिन रात अपने काम में लगा रहता है कि मेरे बच्चा पढ़ के, मेरी बेटी, मेरी बच्ची पढ़ के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, MBA कर ले, है ना, अपने भी, अपना भी सेहत का ध्यान नहीं रखता है, उनके ही उसमें लगा रहता है, सेवा में। और जब 25-30 साल बन के वो MBA बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो आप जरा पूछ के देखो अपने बच्चे से या अपने बच्ची से या अपनी पत्नी से, मैं आपके लिए इतने साल, 25 साल मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, आप पूछ के देखो मैंने बहुत किया, तो क्या बोलेंगे वो? बोले क्या किया, हमारा जीवन खराब किया। प्रैक्टिकली आपको ऐसा लगता है कई बार ना, जैसे हमने कुछ भी नहीं किया, वो आपको लगता है मैंने बहुत कुछ किया, किंतु वो क्या महसूस करते हैं, परिवार वाले क्या महसूस करते हैं? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ भी किया नहीं, हमने जो लिया हुआ था उनको वापस दिया। अगर किसी का कर्जा हमने लिया था और वापस कर दिया, तो हमने क्या किया? बहुत कुछ किया क्या? अपना कर्जा चुक तो किया ना, इसमें एहसान की बात है क्या? इसमें कोई एहसान की बात है क्या? इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। तो प्रैक्टिकल स्थिति यहां पर आती है कि हमको ये सब कार्य करते हुए, ये तभी पॉसिबल है जब हमारी जो बाबा की श्रीमत है ना, जैसे डायरेक्शंस हैं, उस पर कई बार ये भी हम यहां से भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे एग्जांपल ले सकते हैं? अभी बाबा की कल की मुरली थी शायद, अभी हमारी रिटर्न जर्नी है, हम 84वें जन्म में अभी हैं और आज से 4-5 दिन पहले की मुरली थी कि जब हम त्रेता युग की स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमारी कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी, स्थिति हमारी एकरस हो जाएगी। तो हमको 84वें जन्म से लेकर 81वें जन्म तक जाना है। जो भी 84 जन्म से लेकर 21वें जन्म तक जो भी हमने पाप कर्म 63 जन्म में किए हैं, उन सब विकर्मों को, जो भी पाप, उनको विनाश करना है। कैसे? बाबा की याद से। और बाबा की याद से करना है, किंतु उसके बाद भी हमें क्या करना है, उसमें भी हमारे सामने बहुत सारे, जो भी पाप, एक भी पाप कर्म माफ नहीं होता है। योग से क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात यहां बताता हूं। अगर मान लीजिए आज से 100 साल पहले माना, मान लो एक जन्म पहले आपने किसी से 500 रुपया उधार लिया था और 100 साल में वो 500 रुपया कितना हो जाता है? एक दिन मैं जोड़ रहा था, मैं अकाउंट चेक कर रहा था, तो 500 रुपया 100 साल पहले अगर आपने उधार लिया हो तो वो 25 करोड़ 60 लाख हो जाता है ब्याज लगा करके। ये मतलब कर्मों की सिद्धांत है, आप खुद भी लगा के देखना, है ना। पहले जमाने में 5 साल में डबल होता था, 500 रुपया 1000 होता था, 1000 फिर 2000 होता था। तो अभी जो है 500 रुपया 25 करोड़ 60 लाख रुपया हो जाता है। तो 100 साल पहले आपने 500 रुपए लिया था, अगर वो व्यक्ति आपका आज बच्चा बन के आ जाए या आपका दोस्त बन के आ जाए, आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए और आपको वो कहे कि मेरे 25 करोड़ मुझे दो, तो आप दे सकते हैं? दे सकते हैं? आपके पास तो 5000 रुपए भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपके लिए? आपके लिए तो फांसी जैसी चीज होगी ना। तो बाबा की याद से कई बार हम ये कर्मों की गुह्य गति को हम पहचानते नहीं है। बाबा के योग से क्या फायदा होता है? तो बाबा की याद से ये फायदा होता है कि पावरफुल याद से, ऐसे कच्ची पक्की याद से नहीं, एक अव्यभिचारी याद से, एक रस स्थिति से क्या फायदा होता है कि 24 करोड़ 99 लाख 99,500 रुपया माफ हो जाता है। सिर्फ 500 रुपया उसको देना पड़ता है, 500 तो देना पड़ेगा, कितना माफ हो गया? 24 करोड़ 99 लाख 99,500 रुपया माफ हो जाता है योग से, और सिर्फ 500 उसको देना पड़ता है। तो योग से इतना फायदा होता है। ज्यादा फायदा होता है, कम होता है? तो ये है सूली से कांटा होना। अगर मैंने किसी को दुख दिया है, किसी को कोई, किसी के दिल को नुकसान पहुंचाया है, किसी को कोई स्थूल में नुकसान दिया है, किसी को कोई उसके पेट पे, जैसे ना कहते हैं पेट पे, पेट को दुख दिया, मतलब उसको खाना ने, उसको देना था नहीं दिया, या कोई भी और तकलीफ, किसी टांग भी मान लो मेरे कारण टूट गई हो, तो अब भी वो दुख मेरे सामने आएगा, किंतु क्या होगा? सूली से कांटा हो जाएगा। भले बीमारी आएगी, वो बीमारी भी मुझे महसूस नहीं होगी, बहुत मदद मिल जाएगी, परिवार की मदद मिलेगी, यज्ञ की मदद, दादियों का प्यार मिल जाएगा, है ना, बाबा का प्यार मिलेगा, वो बीमारी बीमारी महसूस ही नहीं होगी, बल्कि और ही सुखदाई बन जाएगी। तो ये योग से हमें फायदा होता है। तो ये जो है, हमें अभी इसकी गहराई में जाकर के, अब वो हम योग किस तरह से अपने आप को, कैसे हम बाप समान साक्षी और साथी कैसे रहे, उसके लिए हमें क्या आवश्यकता है कि जो आत्मा के 7 गुण है ना, जो से ये आत्मा के 7 गुण है, ये हमारे अंदर भरपूर होने चाहिए। और वो भरपूर करने के लिए हमारे अंदर एक क्लॉक लगी हुई है, घड़ी है हमारे अंदर। वो घड़ी के अनुसार अगर हम बाबा को याद करते हैं, क्योंकि साक्षी तब व्यक्ति रह सकता है, सामने कुछ हो रहा है, जब वो भरपूर हो, जब संपन्न और संपूर्ण हो। मान लीजिए मेरे सामने कुछ चीज हो रही है, और मैं चुपचाप कैसे देखता रहूं उसे? अगर मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पैसा है, मेरे पास वो सब साधन है, वो जो नुकसान हो रहा है उसको मैं साथ ही, अरे कोई बात नहीं, नुकसान हो जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ले लेंगे ना, ये खराब खराब हो जाने दो, कितनी बात है, ये तो 500 रुपए की चीज है, खराब होगी तो टूट जाने दो, कोई बात नहीं, जल जाने दो, कोई बात नहीं, है ना, मेरे पास 5 करोड़ है ना, 500 रुपए खर्च करेंगे, नहीं ले आएंगे। और आपके पास सिर्फ एक ही 500 रुपए वाली चीज हो, वो जल जाए तो क्या होगा, खराब हो जाए तो आप खराब होते देख सकते हैं। आपकी जेब में 200 रुपया है और 500 रुपए की चीज खराब हो रही है तो आप देख सकते हैं, तो बुद्धि जाएगी ना उधर, नहीं जाएगी। अगर मेरे पास, मेरे को थोड़ा सा, मेरे को, मेरे अंदर सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं है, सम्मान मैं नहीं रहता हूं, थोड़ी सी मेरी को ग्लानी करता है तो मैं साक्षी रह सकता हूं? इतनी थोड़ी सी तो मेरी इज्जत थी, वो भी खत्म हो गई। अगर आपको याद है कि मुझे किसने चुना है ना, बाबा से मुझे क्या सम्मान मिले हैं, बाबा ने मुझे क्या क्या टाइटल दिए हैं, तो भले ही दुनिया वाले गाली दें, गलानी करें, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास बहुत सारा हो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज हो। वो तभी पॉसिबल है जब आप बाप को अपना साथी हमेशा बना के रखें, ऐसा महसूस हो कि बाप सदा मेरे साथ है। अगर ये महसूस नहीं होता बाप मेरे साथ है, तो फिर आप साक्षी नहीं रह सकते। अब बाप मेरे साथी कब रहेगा? नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो कनेक्शन है ना, जो परमात्मा से, परमात्मा जो है, शिव बाबा जो है, उसके कितने संकल्प चलते होंगे एक दिन में? एक दिन में कितने संकल्प चलते हैं बाबा के? बाबा को कोई संकल्प नहीं चलता है क्या? शिव बाबा को, शिव बाबा जहां रहता है वहां संकल्प चलते हैं क्या? वो संकल्पों की दुनिया ही नहीं है, वो संकल्पों से परे दुनिया है, परमधाम में कोई संकल्प होता ही नहीं है। तो शिव बाबा कोई संकल्प नहीं चलता। बाबा कहता जब ड्रामानुसार जब मेरा पार्ट होता है तो मैं नीचे आता हूं, अपने आप नहीं आता हूं, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं, तो मैं तब नीचे आता हूं ब्रह्मा के तन में और बच्चों को ज्ञान दे करके, पवित्र बना करके और उनको संपन्न संपूर्ण बना करके क्या करता हूं, वापस चला जाता हूं, वानप्रस्थ में चला जाता हूं। तो वहां कोई भी संकल्प नहीं है, वो संकल्पों से परे की दुनिया है, वो स्वीट होम है। स्वीट होम क्या कहते हैं उसे? आज मैं मुरली पढ़ रहे थे, जब ये मुरली सुन रहे थे तो मेरा विचार चल रहा था, आज की मुरली में था स्वीट होम, साइलेंस होम। वो स्वीट होम क्यों है? जैसे कि कई बार क्या होता है, हम बाहर दुनिया में थक के आते हैं ना, अपने घर में, अपना घर एक कोने में बना हुआ है और वहां पर कोई आवाज नहीं है, साइलेंस है, अपने बेड पे आते चुपचाप जाके सो जाते हैं, इसलिए अपना घर प्यारा लगता है। बाहर बहुत शोर होता है, वहां कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किंतु घर में कोई कुछ नहीं कहता है, अपना घर प्यारा लगता है। ऐसे जो बाबा, जो हमारा असली घर है परमधाम, वहां पर कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, शरीर नहीं है ना, शरीर की कोई खिचपिच नहीं, खिटखिट नहीं है ना, एकदम बस आत्मा है और हमारा बाबा है और परम शांति है, परम आनंद ही आनंद है, एकदम हर बात से प्रूफ है, दुख से प्रूफ, सुख से, सब बातों से प्रूफ है। वहां जाके आत्मा, 5,000 साल की थकी हुई आत्मा वहां जाती है, वहां जाके रेस्ट करती है, कोई विचार भी नहीं चलता है। तो वो जो दुनिया है वो जीरो दुनिया है, एकदम 100% पवित्र दुनिया है, पावन दुनिया है, संकल्पों से परे की दुनिया है। तो अगर मुझे परमधाम में जाना है, अगर मुझे परमधाम में बाबा के पास जाना है, परमधाम में बाबा को याद करना है, बीज रूप स्थिति में जाना है, तो मेरा भी कोई विचार नहीं होना चाहिए, कोई संकल्प नहीं उठने चाहिए, और वो स्थिति में ही जाके विक्रम विनाश हो सकते हैं। जितने भी विक्रम बनते हैं, विक्रम क्यों बनते हैं, पापक्रम क्यों बनते हैं, पापक्रम जितने भी बनते हैं वो हम देह भान में आने से बनते हैं, बॉडी कॉन्शियस में। जब मैं आत्मा, अपने को आत्मा भूल करके देह, मैं देह हूं या देह के संबंध ये मेरे हैं, इसमें फंस जाते हैं, ये चीज मेरी है, ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें फंस जाते हैं, तो विक्रम बनने शुरू होते हैं। इसी कारण से हमारे अंदर काम विकार उत्पन्न होता है, इसी से हमारा क्रोध, ये चीज मेरी है, इसको कोई नुकसान क्यों, इसको क्यों, इसको ये क्यों छेड़ते हैं, इसको ये क्यों देखते हैं, इसको ये क्यों लेते हैं, क्रोध पैदा होता है। वो चीज मेरी है और ज्यादा इकट्ठी कर ले, लोभ पैदा होता है। वो चीज मेरे पास ही रहे इसलिए मोह पैदा होता है। अहंकार, कोई चीज मेरे अंदर स्पेशल विशेषता है तो उससे अहंकार पैदा होता है। और इसी से कुछ और गलत बातें पैदा होती हैं। तो वो जो ये जो बातें पैदा होती हैं, एक्चुअली ये पांच तो कीड़े जैसे आत्मा को लग जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कीड़ा लग जाता है। और मन में क्या होता है, मन में ये 10 बातें बैठ जाती हैं। मन में जो बाबा ने अभी कहा, मुरली में कहा कि काम विकार के जो अंश है ना, वो 2 अंश है काम विकार के जो आज भी हमारे अंदर है, वो आलस और अलबेलापन है। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा विचार पैदा होते हैं और ज्यादा विचार पैदा होने से एनर्जी खत्म हो जाती है, आपकी शक्ति अंदर से खत्म हो जाती है और उससे आलस्य पैदा होता है और हम केयरलेस हो जाते हैं। और जब कभी दिनचर्या में हम आगे पीछे करते हैं ना अपने आप को, अमृत वेले में थोड़े से आगे पीछे कर ले, अमृत वेले को चलो छोड़ो, आज तो रात को बहुत देर से सोए थे, आज अमृत वेला हम लेट कर लेते हैं, चलो आज अमृत वेला उठे किंतु सो गए, है ना। कई लोग हम कई बार क्या होता है अमृत वेला में अटेंशन से नहीं अलर्ट अमृत वेला करते ना, जिस नशे में आकर नहीं करते हैं तो अमृत वेला पावरफुल नहीं होता है। और अमृत वेला करने का मतलब क्या है, अमृत वेले का महत्व तभी है जब कम से कम 20 मिनट आनंद की स्थिति आए। अगर हमें 20 मिनट आनंद नहीं आया तो अमृत वेला करना व्यर्थ है। और आनंद कब आएगा, जब हम मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाऊं, खो जाऊं, मुझे जरा भी अपना भान ना रहे, जरा भी मैंपन मेरापन ना रहे, तब आत्मा देह का जरा भी भान ना रहे, सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ बाबा और मैं, बस मैं और मेरा बाबा, जब यह स्थिति हो तब आनंद की स्थिति होगी। और जब आनंद की स्थिति होगी तब ही अमृत वेले का महत्व है। जैसे मैंने कहा शिव बाबा का फ्रीक्वेंसी कितनी या उसके कितने विचार, 0। और ब्रह्मा बाबा को सिर्फ एक ही विचार है, कितने विचार है ब्रह्मा बाबा को, वो कौन सा विचार है, कि जल्दी से मेरे बच्चे क्या बन जाएं, संपन्न और संपूर्ण बन जाएं, बस एक ही विचार है, बच्चे जल्दी से संपन्न और संपूर्ण बने। वो हमारी वेट कर रहे हैं, कितने साल हो गए वेट करते हुए, 41 साल हो गए वेट करते हुए, वो तो संपन्न संपूर्ण बन गए और 41 साल से हमारी वेट कर रहे हैं कि कब मेरे बच्चे संपूर्ण संपन्न और संपूर्ण बने तो क्या करें, हम परमधाम चले, है ना। वो सिर्फ यही वेट कर रहे हैं, एक ही विचार उनको है, वो दिन रात एक ही सेवा करते हैं, अपने बच्चों की संपन्न और संपूर्ण बनने की सेवा करते रहते हैं, निरंतर उनको सकाश देते रहते हैं। तो अगर मेरे 2 विचार हो ना सिर्फ, या तो एक ही विचार हो मेरा भी ब्रह्मा बाबा जैसा फॉलो फादर, या सिर्फ 2 विचार हो, तो ही मैं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से ब्रह्मा के थ्रू कनेक्शन लगा सकता हूं, क्योंकि ब्रह्मा के तन में आया ना, तो ब्रह्मा के थ्रू मेरा कनेक्शन लग सकता है। 0, 1, 2 नॉर्मली, अर्थात बाप का साथी बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे संकल्प से 2 रह जाना चाहिए, नहीं तो मैं बाप का साथी नहीं बन सकता हूं। और बाप का साथी बनने के बाद ही मैं साक्षी रह सकता हूं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे साक्षी रह सकता हूं, अच्छा या बुरा हो, तो सब अच्छा रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ क्योंकि ड्रामानुसार हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो नॉर्मली जैसे हम ही जानते हैं कि नॉर्मली 15 विचार 1 मिनट में चलते हैं, हमारे जो विचार है ना 15 विचार हमारे 1 मिनट में चलते हैं, 15 विचार 1 मिनट में चलना माना, उसमें से 7-8 विचार तो कॉन्शियस विचार होते हैं, कॉन्शियस माना जो हम जानते हैं अभी हम कौन से विचार कर रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं तो मुझे पता है कि मुझे किस टॉपिक पे बोलना है, मेरे सामने कौन बैठे हैं, आज कौन सा दिन है ना, अभी कितने बजे हैं, कितने बजे तक मुझे शाम को किसी से मिलना है, कितने बजे सोना है, आज शाम को क्या खाना है, तो ये कॉन्शियस विचार है। कुछ जितने कॉन्शियस विचार उतने ही सब कॉन्शियस विचार होते हैं, मतलब चित्त में हमारे कुछ विचार चलते हैं, जैसे 7-8 विचार सब कॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं। जैसे मेरा नाम है, शरीर का नाम है, मुझे कुछ और काम, कल मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, परसों कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, है ना, वो सब कॉन्शियस थॉट्स चल रहे हैं। तो लगभग 15 विचार हमारे एक मिनट में चलते हैं। तो मेरे विचार 15 और बाबा के कितने विचार, शिव बाबा के कितने, निराकारी के 0 और ब्रह्मा बाबा का 1, दोनों का मिलन हो सकता है, हो सकता है, 1 उनका और 15 मेरे, चल सकता है, कनेक्शन लगेगा, नहीं लग सकता है। और जो ज्ञान है ना, जो ज्ञान है ना, ज्ञान बेसिकली, वैसे ज्ञान तो बाबा ने कितना का कितना ज्ञान है, ज्ञान का विस्तार कितना है, बाबा ने कहा अगर पूरे समुद्र को शाही बना दो, जंगलों को कलम बना दो, धरती को पृथ्वी को कागज बना दो, तो भी ज्ञान लिखा नहीं जा सकता है। किंतु सार रूप में ज्ञान कितना है, हम कहते हैं ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, और D फॉर ड्रामा माना, इस संसार एक ड्रामा है, इसमें सब आत्माएं एक्टर्स हैं, परमात्मा इसका डायरेक्टर है, और वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको डायरेक्ट कर रहा है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो जितना हम बार बार ABCD का अंदर चिंतन करते हैं, इसको गहराई से इसका स्वरूप बनते हैं, खाली चिंतन नहीं करना है हमें, इसको रियलाइज करना है और इसकी गहराई में जाना है, इसका स्वरूप बनना है। जितना हम गहराई से इसका स्वरूप बनते जाते हैं तो उतना ही हमारा मन पवित्र होता जाता है, उतने हमारे विचार कम होते जाते हैं। मान लीजिए 15 मेरे विचार चल रहे थे अभी, तो मैंने इन 4 विचारों को ABCD को अंदर चिंतन करना शुरू किया और मेरे विचार क्या होगा, धीरे 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 कम होते जाएंगे। दुनिया की मुझे क्या करना है, 8 बजे के बाद मुझे भूल जाएगा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा, ये सब प्रेजेंट टेंस है ना। विचार क्यों बढ़ते हैं, या तो पास्ट टेंस में जाते हैं हम, या फ्यूचर टेंस में जाते हैं, मैं तो भूतकाल में जाते हैं, भविष्य काल में जाने से, प्रेजेंट में रहने से, वर्तमान में रहने से विचार कम चलते हैं। और चारों की चारों बातें क्या है, ABCD माना, वर्तमान, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, वही मेरे माता पिता टीचर सदगुरु बंधु सखा साजन सजन है, और संसार एक ड्रामा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, ये सारा वर्तमान। तो मेरा मन पवित्र होता जाता है, फिर ये नहीं फील होता इसने मेरे को ऐसा क्यों किया, ये मेरे को ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, ये मेरी ग्लानी हमेशा क्यों करते रहते हैं, ये मेरी हमेशा प्रशंसा करते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है ना। तो इससे विचार कम होने लगते हैं, और जब हमारे विचार 8 रह जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, मन में शांति महसूस होने लगती है। 15 विचारों पे ना शांति महसूस होती है, ना अशांति महसूस होती है, तो 8 पे शांति महसूस होने लगती है। और जब हम इसकी और गहराई में जाते हैं, यानी 4 विचारों करते करते, मुरली भी बेसिकली क्या है, मगर मुरली को आप गहराई से पढ़ें, मुरली में भी 4 बातें होती हैं, ABCD। शुरुआत होती है आत्मा से, है ना, बच्चे आत्मा में माने हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, फिर नीचे आता है बाप टीचर सतगुरु, है ना, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं, है ना, तीनों रूप से मुझे याद करो, और फिर डी ड्रामा, है ना, संसार एक नाटक है, ड्रामा है, इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसमें ये तुम्हारा ये होगा, सत्युग में ये हुआ, त्रेता में ये हुआ, द्वापर में ये हुआ, कलयुग में ये हुआ, है ना। देखो तो पूरी मुरली भी ABCD के ऊपर ही आधारित होती है, ज्ञान बेसिकली पूरा क्या है, ABCD है। तो जितना जितना, अर्थात दूसरे शब्दों में, जितना जितना हम मुरली पर चिंतन करते हैं, जितना जितना मुरली का मंथन करते हैं, जितना जितना मुरली को हम घोटते हैं, तो उतना उतना क्या होता है, मेरे विचार कम होते जाते हैं। और मुझे तब, जब मेरे विचार 6 रह जाते हैं, तो क्या होता है, मुझे दूसरों के प्रति प्यार अनुभव होने लगता है, अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। मुझसे बचपन से लेके कुछ गलतियां हुई होंगी, हम सब से दूसरों से भी गलतियां होती हैं, गलतियां माना विकारों के वश हुए कर्म, काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश, कुछ ना कुछ हमसे, आलस के वश, अलबेलेपन के वश, चिंता के वश, भय के वश, शक अनुमान के वश, जल्दीबाजी के वश, ईर्ष्या द्वेष के वश, इन जो इनके अंदर जो हम कर्म करते हैं उसको विकर्म कहते हैं, पाप कर्म कहते हैं। तो ये हमसे पाप कर्म हुए हैं, और वो पाप कर्म क्या हमसे जो हुए हैं, अब जब हम ये चिंतन करते हैं तो क्या होता है, मुझसे भी हुए, दूसरों से भी हुए हैं, तो मेरे को क्या होता है, मैंने भी तो किया ना ऐसा, इसने भी किया तो क्या बड़ी बात है, तो गलती तो मेरी थी, उनकी गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी। तो हमें प्यार आने लगता है दूसरों के प्रति, अपने प्रति भी प्यार आने लगता है, नहीं मैं तो ओरिजिनल तो ये आत्मा हूं, बाबा की संतान हूं, बाबा मुझे कितना, बाबा ने अभी क्या कहा मुरली में, हे मेरे लाडले बच्चे, मेरे दिल में बसने वाले बच्चे, अभी वैद्य का खाता समाप्त करो, कहा ना पापा ने, मेरे दिल में बसने वाले बच्चे है ना, बाबा के, हम दावा के बाबा के दिल में बसने वाले बच्चे है ना, कितना नशा आना चाहिए, भगवान कह रहा है मेरे, भगवान खुद क्या कहता है कि तुम मेरे दिल में बसने वाले बच्चे हो, है ना, तो कितना नशा आना चाहिए ना। तो ये जब हम बार 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 रियलाइज करते हैं, अंदर से अनुभव करते हैं, तो मुझे अपने ऊपर प्यार आने लगता है कि मैं कितना अच्छा हूं, बाबा ने मुझे कहां से चुना है, करोड़ों में से मुझे चुना है, और दूसरों के ऊपर भी प्यार आने लगता है। और फिर जो है जब ये प्यार आने लगता है तो और विचार कम, हम उस प्यार में खोने लगते हैं, और प्यार में आने से हमें और ज्यादा ये सिर्फ चार ही विचार रह जाते हैं, ए बी और सी और डी। जब चार विचार महसूस होने लगते हैं तो ये देह और देह की दुनिया भूलने लगती है, फिर ये दुनिया भी भूलने लगती है, दुनिया में जो भी है ना भाई बहन है वो भी भूलने लगते हैं, बच्चे, युगल, माता पिता, सब पदार्थ, घर, सब कुछ भूलने लगता है, और हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि हम सूक्ष्म बंधन में पहुंच गए, अर्थात हमें सुख की अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति होने लगती है। सुख भी एक तो होता है कर्मेंद्रिय का सुख, देखने का सुख, खाने का सुख, बोलने का सुख, सुनने का सुख, छूने का सुख, है ना, ये है इंद्रियों के सुख। एक होते अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख माना जो अंदर अंदर से महसूस होता है, इंद्रियों से परे का सुख, अर्थात बाप के साथ में जाने का सुख, बाप के साथ शांति का झूला, प्रेम का झूला, सुख का झूले में झूलने का सुख, ज्ञान के झूले में झूलने का सुख, पवित्रता के झूले में झूलने का सुख, आनंद के झूले में झूलने का सुख, वो सुख महसूस होने लगता है। अंदर से क्या होता है, एक में उसकी फीलिंग कैसे होती है, अंदर से बहुत जैसे रोमांच खड़े होने लगते हैं, ये सोचते सोचते, आप देखो, सोच के देखो, एबीसीडी को बार बार चिंतन करते गहराई में जाते जाओ, गहराई में जाते जाओ, थोड़ी देर में ऐसा फील होगा जैसे अंदर से रोमांच खड़े हो गए, और रोमांच खड़े होने के बाद ऐसे लगा जैसे हमें देह है ही नहीं, ये क्योंकि वो हार्मोन्स निकलते, ऐसे हार्मोन्स अंदर से निकलते हैं कि वो जब हार्मोन्स निकलते हैं, खुशी वाले हार्मोन्स निकलते हैं, तो खुशी वाले हार्मोन्स जब ऐसा कहते हैं पॉजिटिव चिंतन, इसके पीछे साइंटिफिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि जब हम कोई पॉजिटिव बात सोचते हैं तो अंदर ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिनको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एक तरह की अफीम है, अफीम समझते हैं, मॉर्फिन, ओपियम खाते हैं ना कई लोग, अफीम खाते हैं, अफीम खाने वाले क्या फील करते हैं, अफीम खाने वाले क्या महसूस करते हैं, अफीम खाने से क्या होता है, अफीम जो लेते हैं ना, अफीम जो सबसे स्ट्रांग पेन किलर है दुनिया में, स्ट्रांगेस्ट पेन किलर, कैसा भी दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, पेट का दर्द, दिल का दर्द, सिर का दर्द, कहीं का भी दर्द खत्म हो जाता है, और अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं, इतना हल्का महसूस करते हैं जैसे एकदम जैसे है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, ऐसा फील होता है उनको, और भले आसपास गंदगी पड़ी हो, बांस भी आ रही हो ना, तो उनको फील नहीं होती है, नाली में पड़े होते ना वो लोग, तो भी महसूस करते हैं हम कहां पर हैं, स्वर्ग में है ना, बहुत बढ़िया गद्दे पे, राजमहल में है ना, ऐसा महसूस करते हैं। तो जब हम ऐसा पॉजिटिव चिंतन करते 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 जब ऐसे चले जाते हैं तो हमारे अंदर वो एंडोर्फिन, नेचुरल मॉर्फिन निकलने लगती है अंदर से, और उसके साथ हम देह का भान भूल जाते हैं और देह से न्यारे हो जाते हैं, और जितनी एंडोर्फिन बढ़ती जाती है हम लोग शरीर का दर्द, कमर का दर्द सब भूल जाते हैं। कहीं जैसे कोई बड़े बीमारी हो आपको, शरीर में रोग हो, आपसे चलाना जाता हो, हाथ पैर मुड़ गए हो, घुटने के डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कमर की हड्डी खराब हो गई है, डिस्क निकल गई है, सिर में माइग्रेन का दर्द होता है, गर्दन की हड्डी हिली पड़ी है, कमर की सब, मतलब सब कुछ गड़बड़ गड़बड़, सांस भी नहीं आता ढंग से, है ना, हार्ट की सब आर्टरी भी बंद है ना, तो भी ऐसी फीलिंग आएगी जैसे मैं देह में हूं ही नहीं और बाबा की गोद में हूं। चार विचार होने के बाद ऐसा महसूस होगा। जब तीन विचार हो जाएंगे तो खुशी की, बहुत खुशी, एक्सटेसी की बहुत फीलिंग होगी। तीन माना एबीसी, खाली आत्मा बाबा कनेक्शन, ड्रामा भी खत्म। मैं आत्मा हूं, बाबा की संतान हूं, और सर्व संबंध की अनुभूति बाबा से होती रहेगी। मां की अनुभूति, बाप की अनुभूति, टीचर की अनुभूति, सतगुरु की अनुभूति, है ना, मतलब बंधुओं की, सखा की अनुभूति, और अपने साजन की अनुभूति। साजन माने सजाने वाला, है ना, गुणों से सजाने वाला, है ना, सजन की अनुभूति। सजन माना ऑपरेशन करने वाला, आत्मा का ऑपरेशन करके सब विकार निकाल दिए, मन का ऑपरेशन करके सारी जो आलस निकाल दिया, अलबेलापन, ये मन में होता है। आलस और बेलापन कहां होता है? विकार आत्मा में होते हैं, और मन विकार कहां होते हैं? ये जो आलस है, अलबेलापन है, चिंता, भय, शक, अनुमान, ईर्ष्या, द्वेष, जल्दीबाजी करना, अपनी चलाने की कोशिश करना, हर समय दूसरों में दोष निकालना, ये मन में होते हैं। जैसे आप कहेंगे आत्मा और मन में क्या फर्क है, जैसे शरीर है ना, ये शरीर है, किंतु मुझे आपसे कुछ देना हो, लेना हो तो कैसे दूंगा मैं आपको? हाथ के द्वारा ना, लेना हो तो हाथ के द्वारा, देना हो तो हाथ के द्वारा। ऐसे ही आत्मा जैसे ये है, तो ये हाथ उसका मन है, हम मन के द्वारा ही कुछ किसी को देते हैं, लेते हैं। अगर मुझे कुछ लेना हो ना, आत्मा से लेना हो शरीर को, कुछ कैसे? मन के थ्रू लूंगा, और देना हो आत्मा को तो मन के विचारों के थ्रू दूंगा, है ना, और विचारों के थ्रू ही लेन देन होता है आत्मा का शरीर के साथ। तो ये जो है मन के अंदर आ जाते हैं, ये विकार यहां पर, और मन के अंदर ये बातें आ जाती हैं, और फिर तन में वो फीलिंग्स लगातार बहती रहती हैं, विकारों की फीलिंग बहती, उसकी वजह से वो हार्मोन्स बहते रहते हैं, उसके कारण हार्ट रेट तेज होती है, बीपी तेज होता है, बीपी बढ़ जाता है, नशे में शुगर, शुगर बढ़ जाती है, नशे सिकुड़ती रहती हैं, हाथ पैरों में दर्दें होती रहती हैं, ऐसे ऐसे केमिकल निकलते रहते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, कमर दर्द होने लगती है, और भी कोई बीमारी, पेट पेट साफ नहीं होता, गैस इस गैस गैस बनेगी, एसिड बनेगा, है ना, पैरों में दर्द होता रहेगा। कहते ना, कई बार देखता होगा किसी किसी व्यक्ति को, देखो ना आप, जो व्यक्ति को आप लाइक नहीं करते हो ना, सामने आ गया संबंध संपर्क वाला कोई व्यक्ति है, तो क्या दर्द, सिर दर्द होने लगता है, नहीं होने लगता है, भूख भूख खत्म हो जाएगी, उसको देख के भूख खत्म हो जाएगी, नहीं है ना, आपका कमर का दर्द कई दिनों से नहीं था, उसको देख के कमर दर्द शुरू हो गया, है ना, क्यों हो गया? संबंध संपर्क में के साक्षी रहना ना, साथी रहना, कैसे रहेंगे? क्योंकि उसको देख करके, क्योंकि उसके साथ के अनुभव ऐसे हैं मेरे, उन्होंने मुझे 20 साल से इतना दुख दिया है, इतना परेशान किया है, तो क्या होता है, उसको देख के सब बातें याद आ जाती हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो बातें याद आती हैं, वो टेंशन वाले हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं और दर्द शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति जावे तो दर्द खत्म हो जाता है अपने आप, और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, आपको दर्द हो रहा है, उसने आपको बहुत सुख दिया है, बहुत आपको प्यार करता है, बहुत आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपकी महिमा करते रहते हैं हमेशा, है ना, तो क्या होता है, देख करके उसको सिर दर्द खत्म, कमर का दर्द खत्म, अपने आप ऑटोमेटिक जादू लग गया जैसे ना, उसने दवाई दी क्या आपको? दवाई नहीं दी, उसको देख करके जो उसने अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करता है ना, वो आपको याद आने लगती है, पॉजिटिव बातें, अच्छी अच्छी बातें याद आने लगती है, इसने मेरे को ये दिया था, इसने मेरे को ऐसा किया था, इसने मेरे को ये दिया, इसने मेरी ये मदद समय पर मदद की थी, वो उससे वो अच्छे अच्छे एंडोर्फिन निकलने लगते हैं, वो हार्मोन्स निकलने लगते हैं, और दर्द खत्म हो जाती है। जब बाबा आता है ना, बाबा जब 15 को आया था, तो बाबा को भी हम देखते क्या करते हैं, बाबा ने हमें इतना सुख दिया, बाबा ने, हम कैसे थे, हम कितने गंदे बन गए थे, बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया, है ना, हमें ऑटोमेटिक वो विचार चलने शुरू हो जाते हैं, बाबा की दृष्टि मिलती है ना, वो तो सागर है ना, शुभ भावना शुभ कामना का, तो वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो हार्मोन निकलने लगते हैं और हम देह से न्यारे हो जाते हैं, दर्द वर्द को भूल जाते हैं, सब बातें भूल जाते हैं, विचार चलने बंद हो जाते हैं। एक्चुअली जब हमारे विचार दो तीन विचार होते हैं तो ही बाबा की मुरली भी अंदर जाती है। जब हम मुरली सुनते हैं ना बाबा की रोज स्मृत वेले, सुबह 7 से 8 मुरली चलती है, अगर मेरे 15 विचार चल रहे हो ना तो बाबा की मुरली अंदर जाती नहीं है। हम बैठे सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है मुरली, वाइब्रेशन अच्छे हैं हमें, अच्छा लग रहा है, बाहर जाओ बाबा ने क्या कहा, याद नहीं है। मीठे बच्चे क्या था, याद नहीं है। वरदान क्या था, याद नहीं है। देखें देखूं जरा डायरी खोल के देखते हैं, हाँ हाँ बाबा, हाँ यही, कोई दूसरा बताए तो हाँ याद आ जाता है, हाँ यही यही था, यही था, यही था, नहीं होता ऐसे, क्योंकि मेरे विचार 15 चल रहे हैं, बाबा की मुरली 1-2 पे चल रही है, 2 का 15 से कनेक्शन हो नहीं सकता है। इसलिए बाबा की मुरली चलने से पहले योग करते हैं, है ना, 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट योग करते हैं। योग करने से मेरे संकल्प कम हो जाते हैं, योग संकल्प करने के कम होने के बाद फिर मैं उस भाव में उस विचारों में मुरली सुनता हूं, दो तीन विचारों में, तो मुरली अंदर जाती है। जब मुरली अंदर जाती है तो फिर मुझे याद रहती है, चलते फिरते याद रहती है, आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा था। बच्चे मैं तुम्हें ज्ञान योग से श्रृंगारने आया हूं, जितना ज्यादा श्रृंगारेंगे उतना ज्यादा हम उच्च पद पाएंगे, है ना, था ना ऐसे, मीठे बच्चे था। आज का पर्दा अपने आप बुद्धि में चलता बसता रहता है, अपने आप बसता रहता है ना। तो ये जब हमारी जब 3 विचार हुए तो हमारी खुशी की अनुभूति होती है, जब 2 विचार हुए तो आनंद की अनुभूति होती है, और जब 1 विचार हुआ तो सर्वशक्तिमान की अनुभूति होती है, मैं बाबा का, बस इतना ही, बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बाबा, सिर्फ बाबा रहेगा ना, बाबा, मेरा बाबा, जब सिर्फ ये रहेगा मेरा बाबा तो सर्वशक्तिमान की स्थिति की अनुभूति होती है। ये सर्वशक्तिमान की स्थिति की अनुभूति होना, और फिर जब ये विचार भी कम हो गया, सिर्फ बाबा में लवलीन हो गए, जब सिर्फ 0.9-0.8 विचार रह गए, है ना, तो मैं परम धाम में पहुंच जाता हूं। मतलब एक से भी एक विचार भी परम धाम में नहीं है, उससे भी कम है, है ना, तो परम धाम में सिर्फ यही फील होता है कि मैं बिंदु परम धाम में हूं, ये बाबा है ये मैं हूं, ये बाबा है ये मैं हूं, बस यही फील होता है। ये भी संकल्प नहीं आता ये बाबा है, बस ये अनुभव अपने आप ही ये फील होता, मतलब ये ऐसा बाबा और मैं, बस ये फील होता रहता है, ये सितारा मैं सितारा, ये सितारा मैं सितारा, और तब विक्रम विनाश होने लगते हैं। क्योंकि विक्रम क्या है, जो भी चीज मैंने इस जन्म में की है, जो भी देखा सुना है, जो भी संबंध संपर्क में जिनके आया हूं बचपन से लेके छोटी छोटी उम्र से, 6-4-5 महीने की उम्र से, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो गया है, और वही व्यक्ति जब मेरे सामने आते हैं, वही चीजें जो मैंने सीखी हुई हैं, वो सब अंदर रिकॉर्ड होकर के वही मेरे को, वही मेरे पाप कर्म है। और इस जन्म में जितने भी जन्मों में मैंने पाप, जितने भी जन्मों में 63 जन्मों में जो भी मैंने किया है ना, वो सब मेरे संबंधी बनके मेरे आसपास है, संबंध और संपर्क वाले बनके मेरे आसपास है, यही परिवार है, किसी ना किसी रूप में, कोई मेरा पति रहा, कोई मेरी पत्नी रही, कोई मेरा बच्चा रहा, कोई मेरे माँ बाप रहे, कोई भाई बहन रहे, किसी जन्म में मैं उनका बच्चा रहा, कभी किसी जन्म में वो मेरे बच्चे रहे, किसी जन्म में मैं उसकी पत्नी रहा, किसी जन्म में वो मेरी पत्नी रहे, किसी जन्म में वो मेरे माँ बाप रहे, कभी मैं उनका माँ बाप रहा, कभी मैं उनका दोस्त रहा, कभी वो मेरे दोस्त रहे, वो सब आसपास ही है, चाहे ब्राह्मण परिवार में चाहे लौकिक परिवार में, आसपास है, और सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। तो जब ये इनके साथ सारा अकाउंट क्लियर होना है हमारा, तो ये अंदर मेमोरीज अंदर भरी हुई हैं। जब आत्मा इस क्रम में आई थी ना, तो ये सब मेमोरी लेकर के आई थी, उसने सब मेमोरी यहां छोड़ दी थी ला करके। इसलिए कोई व्यक्ति देख करके, अभी भी कभी मिले नहीं है, देख के अच्छा लगता है उसको देख के, और कोई व्यक्ति को देख के खराब लगता है, उसको देख के ऐसे फीलिंग आती है ये मुझसे ना मिलूं, इससे मैं नहीं होता ऐसा, क्योंकि पिछले जन्मों की सटल रिकॉर्डिंग्स अंदर होती हैं। तो जब हम परम धाम में टिकते हैं ऐसा लंबा समय, तो हमारे वो विक्रम विनाश होने लगते हैं। इस स्थिति में टिकते हैं ना, जब एक विचार से भी कम विचार में टिकते हैं, बाबा की याद में लवलीन रहते हैं, सिर्फ बाबा और कुछ नहीं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बस यही फील होता रहता है, इसके अलावा कोई विचार ही नहीं है। तो मेरे विक्रम, वो अंदर जो मेमोरीज है ना, वो वहां पर, क्योंकि आत्मा तो मेरे मन बुद्धि ऊपर चला गया, आत्मा तो शरीर में ही है, मन बुद्धि सूक्ष्म वतन में चला गया और मैं अनुभूत वहां अनुभव कर रहा हूं कि मैं एक चमकता सितारा हूं, बाबा के साथ हूं। तो उसका कनेक्शन होने से यहां पर वो रिकॉर्डिंग खत्म होने लगती, डिलीट होने लगती है मेमोरीज। इसने ये किया था, इसने ये किया था, उसने ये किया था, वो सब अपने आप डिलीट होने लगता है। और सिर्फ क्या होने लगता है, एक ही नई रिकॉर्डिंग होने लगती है, मैं आत्मा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, चमकते हुए सितारे की संतान हूं, सब चमकते हुए सितारे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा, एबीसीडी की रिकॉर्डिंग होने लगती है अंदर, पुरानी रिकॉर्डिंग खत्म होने लगती है। फिर जब हम ये ऐसी स्थिति में रहकर नीचे आते हैं तो क्या होता है, हमारे विक्रम विनाश होना माना, अब उस व्यक्ति को देख के मेरे मन में संकल्प नहीं चलते, उस व्यक्ति को देख के मेरे हार्मोन्स नहीं बदलते, मुझे गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ापन नहीं आता है, उस व्यक्ति को देख के मेरे मन में चिंता नहीं पैदा होती, डर नहीं लगता है मुझे उससे, यह है विक्रम विनाश होना। उस व्यक्ति को देख के मुझे शांति महसूस होती है, पहले दुख महसूस होता था, अभी नहीं, अभी खुशी महसूस होती है, वो मेरे को दुख देता है, मुझे खुशी महसूस होती है, हाँ बहुत अच्छा आपने दुख दिया ना, कोई बात नहीं, मेरा अकाउंट क्लियर हो गया, हल्के हो गया, ये फीलिंग होती है। तो इतना इस तरह से हमारे अंदर धीरे धीरे, तो हम साक्षी होना रहे, क्योंकि दुख की फीलिंग आती है, हम साक्षी नहीं हो सकते हैं। मुझे किसी को देख के दुख की फीलिंग आए तो साक्षी हो सकते हैं नहीं, किंतु मुझे अभी सुख की फीलिंग आती है उससे, उस दुख में भी सुख महसूस होता है, तो मैं साक्षी रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि बाप साथी है, क्योंकि बाप साथी माना मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है, एक है दो है, मैं बाप के साथ बैठा हुआ हूं, तो वो जो सुख दुख दे रहा है उसका मुझे, उससे मैं न्यारा हूं, उससे परे हूं। जैसे एक अफीम खाए व्यक्ति को आप कुछ बोलो ना, वो उसको समझ नहीं आता आप क्या बोल रहे हो ना, उसको पता ही नहीं लगता है, उसको कुछ करो भी तो उसको महसूस नहीं होता है। तो इसी तरह से हमारी स्थिति भी तभी साक्षी रह सकती है, संबंध में आते हुए, संपर्क में आते हुए, जब हम बाप के साथ ही रहते हैं, तभी हम साक्षी रह सकते हैं। और ये स्थिति हमेशा यही तभी पॉसिबल है जब सारा दिन चलते फिरते, हर समय, हर सेकंड, हर संकल्प क्या रहे, बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये पक्का अंदर गया। इसका इसका अभ्यास अमृत वेले करने का है, इसका अभ्यास, बाबा कहते हैं अभ्यासी बनो, ये अभ्यास बार बार करो, है ना, ये अभ्यास हमें बाबा का अमृत वेले पक्का करना है। कम से कम 20 मिनट सुबह, 20 मिनट वहीं बैठ जाना है परमधाम में, और 20 मिनट परमधाम में वही बैठ सकता है जो सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कर्म करते यही अभ्यास करता रहे, मैं आत्मा हूं, एबीसीडी का अभ्यास करता रहे, बाबा की मुरली को बार 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 चिंतन करता रहे। जितना अधिक ही चिंतन करता रहे उतना ही ये पक्का होता जाए, पक्का होता जाए। शायद पहले दिन भी जब ये थे ना, एक दिन 13 तारीख को जो था ना, यहां पर एक टॉपिक रखा था, कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा था, वो टॉपिक था, क्या टॉपिक था, युगलों के लिए रखा था, 20 साल से सीनियर युगलों के लिए रखा था। तो वो जो टॉपिक में यही बात डिस्कस की थी कि कैसे हमें सब कुछ करते भी कैसे हम न्यारे प्यारे रह सकते हैं, है ना। तो हम तभी इस स्थिति में रह करके अपने आप को गहराई से, जितना हम बाबा की याद में उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, तो हम ऐसी स्थिति हमारी बनती जाएगी, बनती जाएगी। विक्रम विनाश तो जब एक बार हो गया, सुबह 4 से 5 कर लिया, और फिर नहाते धोते हुए 4 से 8 बाबा ने ये टाइम हमारे लिए रखा है, जैसे बैटरी चार्ज करने के लिए, उसमें किसी से बात नहीं करो 8 बजे तक, है ना, क्योंकि 8 बजे वो टेंशन वाले हार्मोन निकलते हैं। फिर 8 बजे तक जो भी विचार आपने किए ना, जो भी संकल्प चलाए, उसके अनुसार वो टेंशन वाले हार्मोन निकलेंगे। तो अगर 8 बजे तक आप सिर्फ अच्छे संकल्प चलाओ, बाबा की याद के संकल्प चलाओ, मुरली के संकल्प चलाओ, मुरली को याद करो, तो क्या होगा, 8 बजे खुशी वाले हार्मोन निकल आएंगे, फिर सारा दिन खुशी अपने आप बनी रहेगी और बाबा की याद भी ऑटोमेटिक बनी रहेगी। और अगर 8 बजे तक आपने कोई नेगेटिव याद कर लिया, कुछ गलत बोल दिया मुख से, गलत देख लिया, गलत खा लिया, गलत सुन लिया, तो क्या होगा, फिर टेंशन वाले हार्मोन निकल आएंगे। फिर आप सारा दिन भले कोशिश, कितनी मर्जी कोशिश करो, कितनी मर्जी एफर्ट करो बाबा को याद करने की, बाबा को याद नहीं कर सकोगे, चलते फिरते उठते बैठते बाबा याद नहीं आएगा, फिर वही बात याद आएगी जो सुबह सुबह आपने की होगी 8 बजे तक। इसलिए ये अमृत वेले का समय 4 से 8 का एक्चुअली समय हम आत्माओं के लिए बाबा ने स्पेशल रखा हुआ है। 8 बजे के बाद ही फिर जो भी काम करना, अखबार पढ़ना, दुनिया के व्यवहार में आना, तभी करो। और फिर बार बार बाबा ने कहा ना अभी पिछली मुरली में जो कहा था, हर घंटे में 5 स्वरूप का अभ्यास करते जाओ, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट करो, नियम से करेंगे। और सोने के पहले फिर अपने आप को ऑडिट कर लो, ऑडिट माना आज सारे दिन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो लिख लो, बाबा को सब दे दो लिख के, साइन करके बाबा को फैक्स कर दो। बाबा का फैक्स नंबर क्या है? 000000। जब बाबा लिखने के बाद क्या करो, बाबा को बोलो, अपने आप को बोलो, मैं आत्मा 0, मेरा बाप वो भी 0, और अभी तक जो कुछ हुआ सारा दिन में मल्टीप्लाइड बाय 0 है ना। और देखो लेटर ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, और फिर लेटर को फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, अपना चार्ट भर लो, अपने हमने आज क्या गलत किया, क्या ठीक किया, वो चार्ट भर के कितने घंटे याद किया, याद का चार्ट। मैंने एक बात और ध्यान रहे, हम फरिश्ता कब बनेंगे? फरिश्ता तब बनेंगे जब हमारा 51% समय बाबा की याद में बीतेगा। 24 घंटे में से 12 घंटा 1 मिनट बाबा की याद में बीतेगा। क्योंकि आपको पता होगा शेयर मार्केट में भी ना, जब 49% शेयर आपके होते हैं तो आपका आपकी आप उसके कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, किंतु जब आप 51% शेयर आपके हो जाते हैं तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, और सारी टीम आपकी हो जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप चुनते हो फिर। ऐसे ही बाबा ने पीछे 4-5 दिन पहले मुरली में कहा था, जब आप त्रेता की स्थिति तक पहुंचोगे तो आपके कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी, सतोगुणी बन जाएंगे, अर्थात जब आपकी एनर्जी 51% हो जाएगी, मतलब द्वापर के द्वापर खत्म हो जाएगा, सत्युग की स्टेज त्रेता की स्थिति आते ही आप क्या होंगे, कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगे, तो तब हम फरिश्ते कहलाएंगे, अभी फरिश्ते नहीं। जब 84 जन्म को पास करते करते 83, 82, 81, 81, 79 ऐसे करते करते 60, 59, 40, 39 है ना, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 जैसे 21 में पहुंचेंगे विक्रम विनाश, मतलब फिर कोई विक्रम रहेंगे नहीं, फिर सिर्फ दैवी गुणों की धारणा पे अटेंशन कर रखेंगे और हम पहले जन्म तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद बीज रूप स्थिति आ जाएगी और हम बाबा के साथ आत्मा बिंदु बाबा के साथ साथी बन के परमधाम में चले जाएंगे और फिर वापस सतयुग में पहले जन्म में ब्रह्मा बाबा के साथ वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना अभ्यास करेंगे, इसके लिए सारा दिन की दिनचर्या में बहुत ही अटेंशन की आवश्यकता है, हर सेकंड हर संकल्प सफल करना है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी इस मुरली में कि संगम के 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों से, सचमुच अनेक जन्मों से, मैं 1 सेकंड अपना वेस्ट करता हूं, 1 सेकंड अपना कोई गलत काम कर देता हूं, अनेक जन्म मेरे खराब हो जाते हैं, और 1 सेकंड सफल करता हूं तो अनेक जन्म मेरे सफल हो जाते हैं। तो इस पर बहुत 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 अटेंशन रख के, एक एक सेकंड पे, एक एक संकल्प पे, कभी भी अगर अपना जीवन बदलना है तो एक तो कभी गलत मत सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा माना जो बाबा ने कहा वो सोचो, और कभी सोच भी लो अगर गलती से तो कभी मुख से बोलो नहीं, क्योंकि मुख से बोल दिया तो वो आपका होने ही वाला गलत, क्योंकि ब्राह्मणों का हर बोल सत्य सिद्ध होता है, हर बोल सत्य सिद्ध होता है, अपने लिए या किसी के लिए गलत कभी नहीं बोलो, कभी भी नहीं बोलो, बोलो तो सिर्फ वरदान ही बोल बोलो, और सोचो तो सदा शुभ भावना शुभ कामना के बारे सोचो, नहीं तो कुछ मत सोचो। ओम शांति। चल अभी हम सभी, हमारे पास 18 मिनट बाकी हैं, 18 मिनट बाबा को बहुत पावरफुल याद करें, सभी सूक्ष्म वतन में जाके और फिर परमधाम में जाके 18 मिनट परमधाम में जाके बैठे सभी, विक्रम विनाश करें। चलिए बहुत अच्छा समय है, 18 मिनट हम बाबा को याद में जाकर के बैठते हैं। ओम शांति।
वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम।